तो इस तरह से कृष्ण का जो राधा रानी के प्रति प्रेम है वही प्रेम गोवर्धन के रूप में प्रकट हो गया है। और एक सुंदर बात उसे ऐसे बताई कि इंद्र का वज्र है ना, उसने ऐसे कई वज्र फेंके गोवर्धन के ऊपर, लेकिन कोई वज्र का कोई असर नहीं हुआ उसके ऊपर। तो इंद्र ने सर्वेंट भेजे, बोले मैंने वज्र फेंका, अभी बोलो बताओ कितने जानवर मर गए हैं। तो सर्वेंट आया, उनका देखा, बोला सब जानवर जितने भी है, जितने भी जानवर है, जितने पंछी है, सब गोवर्धन के नीचे आनंद ले रहे हैं मरने का तो बात ही नहीं करे। तो फिर दोबारा एक बार भेजा और एक कोई वज्र, एक वज्र था, वो दधीची का वज्र था, दधीची का शरीर से बनाया हुआ, हड्डी से बनाया हुआ। और बाकी सारे वज्र बहुत सारे थे उनके पास, उन्होंने सब बहुत फेंके। तीसरा फेंका तो बोले जाओ देखो अभी कितने पेड़ जल गए। तो बोले महाराज जाके देख के आया, बोले महाराज पेड़ जलने का सवाल नहीं, एक पेड़ का एक पत्ता भी नीचे नहीं गिरा था, एक भी कण भी, एक भी पौधा जो है ना, एक घास का पत्ता भी ऐसा उखड़ा हुआ नहीं है जमीन से, घास का पत्ता भी अभी तक उधर ही है और किसी पेड़ का एक पत्ता भी अभी तक हिला नहीं है, कोई पेड़ गिरा नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। तो बाद में और एक बार फेंकते हैं, तो जाओ देख के आओ। तो क्या वो जो नटखट जो उद्दंड बालक है वो गिरा कि नहीं अभी तक। तो बोले वो क्या गिरा है, वो तो पूरा मुरली बजा रहा है बोलते एक हाथ ने पहाड़ पकड़ा है, एक हाथ ने मुरली बजा रहा है, मतलब कष्ट नाम की चीज़ ही नहीं है। आप लोगों को, आपको लग रहा है कि आप वज्र फेंक रहे हो, सब लोग रोते होंगे, चिल्लाते होंगे, हाहाकार मच गया होगा, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि वो सब लोग आनंद ले रहे, एकदम नाच रहे कूद रहे, और वो मक्खन एक हाथ से मक्खन खिला रहे मैया उसको, एक हाथ से बांसुरी बजा रहा है, एक हाथ से हमेशा दो हाथ से बजाता है, अभी एक हाथ में गोवर्धन पकड़ा हुआ है, वो भी उंगली में पकड़ा हुआ है, कोई कष्ट नहीं है, कोई पसीना नहीं आ रहा है, कोई दम नहीं घुट रहा है उसका, ऊपर से मम्मी मक्खन खिला रही है उसको, सब लोग गीत गा रहे हैं। तो बड़ा आश्चर्य हो गया उनको, और फिर उन्होंने बड़ा वज्र फेंका। तो तब तक 7 दिन हो गए थे, बहुत लंबी कहानी है एक्चुअली, वो 7 दिन में अंदर क्या क्या हुआ उसके, बहुत 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 लंबी कहानी है। तो 7 दिन हो गए, तो बोला अभी भगवान ने कहा ठीक है अभी तो इसको सबक सिखाना चाहिए। और तब वो उधर पूरा वज्र मारने की तैयारी में था, मेन वज्र, तो भगवान ने ना उसका हाथ पैरालाइज कर दिया, उधर ही हाथ को पैरालाइज कर दिया, फिर भी वज्र तो फेंकने का मोशन कर दिया था ना, तो इसलिए वज्र निकल गया। तो वज्र को भगवान ने आकाश में ही रोक दिया, मतलब उसको आकाश में नष्ट कर दिया। तब जाके इंद्र को समझ में आया, अरे अगर ये वज्र किसी को रोकने की ताकत है तो केवल भगवान को है, मतलब ये लड़का भगवान है। तब उसको होश आया और तब वो नीचे आया। और ये सब अभी, और एक मैं आपको बताता हूँ जिसमें इसमें बताया नहीं, वो ऐसा कि वो जब भी बादलों को बोला ना जाओ बरसो करके, तो वो पहले बोलने लगे कि क्यों बरसना है मुझे, ये समय तो प्रलय का है नहीं, तो प्रलय का समय के बिना मैं हम लोग कैसे बरस, कुछ पूछने का काम नहीं, जाओ पहले मेरा ऑर्डर है जाके बरसाओ और सारे ब्रजवासियों को नष्ट कर दो पूरा, इनका धन दौलत गाय वाय जितना भी है सब नष्ट कर दो। एक नटखट बालक के कहने से ये लोग मेरा पूजा कैंसिल करते हैं। तो उसमें ऐसा एक सुंदर पॉइंट लिखा है कि जो होता है ना सिविलाइजेशन, मतलब क्या कहते हैं उसको, जन सामान्य का जो जीवन होता है ना, वो कहते हैं कि वास्तविक रूप में प्रेम पर आधारित होना चाहिए। कोई भी समाज है ना, उसका जो लालन पालन है, पोषण है, वो प्रेम से होना चाहिए, कायदे पर आधारित नहीं होना चाहिए। कायदा होना चाहिए लेकिन कायदे पर वो निर्भर नहीं रहना चाहिए। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिविलाइजेशंस आर नॉट सपोज टू बी बेस्ड ऑन लॉ, सिविलाइजेशंस आर सपोज टू बी बेस्ड ऑन लव। तो इंद्र क्या कर रहे थे, कायदा से चलने का प्रयास कर रहे थे, और ब्रजवासी और कृष्ण भगवान प्रेम से चलने का प्रयास कर रहे थे। तो भगवान को उनको दिखाने का था कि तुम्हारा कायदा प्रेम के सामने कुछ नहीं है, इसलिए भगवान ने उसका कायदा तोड़ा और पर्वत का पूजा करने का आदेश दिया। तभी इंद्र को क्या मैसेज आया कि आप जैसे देवेंद्र की पूजा करने का छोड़कर उन्होंने कुछ बोलते ना पाइल ऑफ रॉक्स, मतलब पत्थरों के ढेर का पूजा करना निर्णय लिया बोलते। ऐसा बताते, देखो भाषा कैसी है, कुछ पत्थरों का ढेर है उसका पूजा करने का उन्होंने निर्णय लिया है, आप जैसे जीवित देवता के राजा को पूजा करने का छोड़कर किसी पत्थरों के ढेर से पूजा करने का निर्णय लिया, तो फिर वो पत्थरों का ढेर क्या है उसका वर्णन में सब कुछ बताया। ये पत्थरों का ढेर मतलब क्या है, वो गोवर्धन है, इसके अंदर इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है, तो पाइल ऑफ रॉक्स इज सुपीरियर टू इंद्रा ऑल्सो। भगवान ने क्या दिखाया कि तुम जो अपने आप को इतना बड़ा समझते हो ना, तो ये जो पत्थर की मैं पूजा कर रहा हूँ ना, पत्थर भी तुमसे बड़ा है और तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति भी उस पर कुछ नहीं कर सकती। 7 दिन 7 रात वर्षा किया तो भी कुछ नहीं हुआ उसको, और जो समर्थक बादल भी वो बोल रहे हैं कि क्यों जाना है, फिर ऑर्डर दिया फिर गए और प्रलय का बादल बरसाया पूरा। तो प्रलय का बादल बरसाने के बाद में कुछ भी नहीं हुआ ना, टस से मस भी नहीं हुआ, ऊपर से गोवर्धन भी एक्स्ट्रा में था। ऐसे नहीं कि गोवर्धन को कष्ट हो रहा है, बाकी सब लोग आनंद में हैं, वो सब वर्षा सहन कर रहे हैं तो वो दुखी है और कष्ट सहन कर रहा है, बाकी सब लोग उसकी वजह से आनंद ले रहे हैं, ऐसा भी नहीं। उसको भगवान की उंगली से इतनी शक्ति मिल रही थी कि वो पूरा आनंद में था, पूरा कुछ कष्ट नहीं था उसको। तो भगवान ने स्थापित कर दिया कि तुमको लगता है ना जो पत्थरों का ढेर है वो तुम्हारे से ज़्यादा पावरफुल है, सिद्ध कर दिया भगवान ने। और एक सुंदर बात बताइए कि जब हम लोग नियम से और कानून से ज़्यादा जोर देते ना, मतलब ऐसा होना चाहिए वैसा नहीं होना चाहिए, ये टाइम पे होना चाहिए, ऐसा जब ज़रूरी है वैसा नहीं, लेकिन जब हम कायदे कानून पर ज़्यादा जोर देते हैं, नियमों पर प्रेम से अधिक, तो हम लोग गर्वष्ट हो जाते हैं, गर्व निर्माण होता है। जब कोई अधिकारी होता है उसके हाथ में कुछ शक्ति है, पावर है उसके हाथ, अधिकार है, और वो अधिकार से सब जगह पर डिसिप्लिन सेट करता है, लेकिन उसमें प्रेम का अभाव होता है समझो, तो उस डिसिप्लिन सेटअप करने के अधिकार के वजह से गर्व निर्माण होता है। जब कायदे कानून को इस्टेब्लिश करने के लिए प्रेम के साथ करते हैं तो गर्व निर्माण नहीं होता है। लेकिन इंद्र ने केवल अपना, अरे मेरा पूजा नहीं हुआ क्या समझते अपने आप को, ऐसा करके दंड देने का प्रयास किया, उसके वजह से वो, क्योंकि उसका पूरा जो मानसिकता थी वो रूल्स एंड रेगुलेशंस पर आधारित थी, इसलिए उसको गर्व हुआ था, क्योंकि उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस स्थापित करने के लिए इतनी शक्ति दी गई थी भगवान की तरफ से, देवता लोक की, पृथ्वी लोक की जितनी पूजा वूजा हो रही है। तो प्रेम का अभाव होने से जब केवल अधिकार प्राप्त होता है और प्रेम नहीं होता है वहाँ पर, तो वो अधिकार जो है हमको आपको केवल गर्व देता है। ये बात आपको समझ में आई, आपके पास में कुछ अधिकार दिया गया है और उसको आपने प्रेम से अमल नहीं किया, अधिकार इसलिए अमल किया, तो वो अधिकार आपको गर्व देगा, और प्रेम के साथ करेंगे तो फिर आपको इतना गर्व नहीं देगा। तो कृष्ण भगवान ने कोई शस्त्र नहीं चलाया, ये जो युद्ध हुआ ना इंद्र का, और कृष्ण के साथ युद्ध करने का प्रयास किया ना उसने, बादल की बरसा, पानी बरसाया, फिर वो थंडरबोल्ट बरसाए, तो भगवान ने जो क्रांति किया ना वो चेतना का क्रांति किया, कोई शस्त्र नहीं उठाया। तो कहते हैं चेतना की क्रांति होती ना, चेतना की, तो वो शस्त्र से भी ज़्यादा प्रभावशाली होती है। कुछ भी शस्त्र न चलाते हुए भगवान ने इंद्र को परास्त कर दिया। और एक बहुत सुंदर बात बताई कि वैष्णव सेवा ये जीवन का साधना नहीं है। साधना किस लिए करते हैं? एक साध्य को हासिल करने की साधना करते हैं। साधना क्यों करते हैं? क्योंकि एक लक्ष्य है हमारा, उसको हासिल करना है। साध्य बोलते हो, साध्य साध्य यानी उसको प्राप्त करना है, इसलिए आप साधना करते हो। उसको क्या कहते हैं? प्रोसेस। आप प्रोसेस क्यों करते हो? उसका एक एंड आपको प्राप्त करना है। तो उन्होंने कहा कि वैष्णव सेवा जो है ना, यही लक्ष्य है हमारा, ये साधना नहीं है हमारी। वैष्णव सेवा प्राप्त करना यही गोल है, और वो जो गोल है उसको गोवर्धन ने परम प्राप्ति कर ली उसकी, मतलब वैष्णव गोवर्धन का जीवन ही वैष्णव सेवा है। मतलब इंग्लिश में वैष्णव सेवा इज द गोल ऑफ लाइफ, नॉट द प्रोसेस। आफ्टर अचीविंग वैष्णव सेवा यू डोंट एक्सपेक्ट समथिंग एल्स टू हैपन, दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। बाय सर्विस यू डोंट गेट एनीथिंग मोर देन दैट, सर्विस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। इट्स लाइक आफ्टर रीचिंग चर्च गेट देयर इज नो मोर स्टेशन, चर्च गेट इज द स्टेशन। दैट इज हाउ इट इज अंडरस्टूड, की वी डू समथिंग टू अचीव समथिंग ना, सो दैट अचीवमेंट इज वैष्णव सेवा। मोर देन लव ऑफ गॉड इट, ऐसा बताते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो वैष्णव साहब जब करते ना तो उसके बाद में कृष्ण जो है ना वो उसी के हो जाते हैं जो वैष्णव सेवा करते हैं, तो गोवर्धन उसमें सब सर्वश्रेष्ठ है। तो ये जो शब्द है ना, मैंने बताया ना रेवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस, इसके ऊपर एक प्रश्न आया था कि गोवर्धन ऐसा बैठा हुआ है ना, मतलब क्या कुछ करता, तो दिखता तो कुछ नहीं है, इज जस्ट सिटिंग देयर डूइंग नथिंग, तो हाउ इज द ग्रेटेस्ट सर्विस, मतलब सबसे बड़ा सर्विस गोवर्धन कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा आपको वो शांत दिखते हैं लेकिन वो बहुत बिजी रहते हैं अपने ट्रीज को मेंटेन करने में, घास को पैदा करने में, अपने झरनों को मेंटेन करने में, तालाब को मेंटेन करने में, और गायों को खिलाने में, सब में कृष्ण भगवान के लिए अपनी गुफाओं को बनाए रखते हैं, वो बैठने की जगह, खेलने की जगह, वो सभी को रखने में वो बिजी रहते हैं, इसलिए कभी आगे दिखते नहीं हैं आपको, ऐसा दिखते नहीं गोवर्धन भी नाच रहे हैं भगवान के साथ में, डांस कर रहे हैं, व्यक्ति बनकर डांस कर रहे हैं, वो किधर भी आगे एंजॉयमेंट में रहते नहीं हैं, सबसे पीछे रहते हैं और सबको सपोर्ट देते हैं, इसलिए उनको ये लेक्चर का टाइटल था गोवर्धन द टीम प्लेयर। मतलब वो टीम में कैसा होता है ना, अभी बीच में टी ब्रेक में पानी लेकर भी कोई आता है उसको खेलने को नहीं मिलता है क्रिकेट में, ना बॉलिंग करने को मिलता है, ना कुछ भी करने को मिलता नहीं, खाली वो पानी लेके आता है, लेकिन वो भी एक टीम का इम्पोर्टेंट मेंबर है। उस तरह से गोवर्धन किधर भी लीला में सहभागी करने के लिए आगे रहते नहीं है, चलो मैं भी डांस करूँगा कृष्ण के साथ, मैं भी माला पहनाऊँगा आपको, मेरे ही फूल है ना सब, ये मैं माला मेरे को पहने दो, वो खाली सबको सेवा करने में हेल्प करते रहते हैं बस, और कभी भी खुद कभी आगे रहते नहीं है, और दिखते भी नहीं कि हिल रहे कुछ नहीं, ऐसे बस पड़े रहते हैं, लेकिन पड़े रहकर भी बहुत बिजी रहते हैं, सबसे बैकग्राउंड में रहते हैं और कभी कभी आगे दिखते नहीं हैं, और सबको सपोर्ट करते हैं, जो भी चाहते हैं वो सपोर्ट करते हैं, ऐसा है। तो ये जो रेवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस है ना, उसमें एक प्रश्न आया था कि चैतन्य महाप्रभु के समय पे रघुनाथ दास गोस्वामी, सॉरी रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हरिदास ठाकुर, इन लोगों ने कभी मंदिर में प्रवेश नहीं किया। रूप सनातन को तो प्रवेश दिया नहीं क्योंकि उन्होंने मुसलमानों को सेवा किया था, वो खुद मुसलमान नहीं थे, लेकिन विफले सेवनु कृपण दुर्जन, इन्होंने अपना जीवन पूरा मुसलमानों की सेवा में दिया, इसलिए भी उनको प्रवेश नहीं दिया उधर। हरिदास ठाकुर भगवान का नाम लेते थे लेकिन वो मुसलमान जन्म के घर के थे, इसलिए उनको भी प्रवेश नहीं दिया। तो प्रश्न यह आया कि महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है ना, वही जगन्नाथ है, वही कृष्ण है, तो उन्होंने कुछ किया क्यों नहीं उनके लिए, भगवान स्वयं जमीन पर खड़े इधर। और तो क्या बहुत सुंदर उत्तर दिया उन्होंने कि भगवान ने ना कभी भी किसी भी करंट जो हम लोग जिस जगह पर है वहाँ के नियमों का कभी तोड़ने का प्रयास नहीं किया कि मैं आया हूँ चलो तुम्हारा नियम कैंसिल, तुम्हारा नियम, मैं भगवान हूँ। भगवान ने उस भूमि का नियम का आदर किया, तो भगवान ने जो भी कुछ किया ना वो ऐसा आंदोलन नहीं किया, भगवान ने एजिटेशन नहीं किया, चळवळ नहीं किया कभी भगवान ने। लॉर्ड चैतन्य डिड नॉट कॉज और लीड द रेवोल्यूशन ऑफ वेपन्स टू अलाउ देम टू इन टेम्पल, लॉर्ड चैतन्य कॉज रेवोल्यूशन ऑफ चेतना, एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस, सब लोगों को ऐसा आनंद दिया कि सब हैरान हो गए, भाव विभोर हो गए सब लोग। लेकिन फिर भी इतना सब होने के बाद भी गजपति को रिक्वेस्ट नहीं किया कि हरिदास ठाकुर को एंट्री दे दो, रूप सनातन को एंट्री दे दो, ये बहुत महान लोग हैं, तो रिक्वेस्ट नहीं किया, उनका नियम को बरकरार रखा उन्होंने, अनादर नहीं किया या आंदोलन भी नहीं किया, विद्रोह भी नहीं किया आपके खिलाफ। गोवर्धन क्या समय, वही मैं याद कर रहा हूँ कि क्या संबंध था उसके अंदर। हाँ, तो मोर देन फिजिकल रेजिडेंस नियर गोवर्धन वी शुड एस्पायर फॉर द मूड ऑफ गोवर्धन, ये पॉइंट कहाँ से निकला था वो लेक्चर अपना सुनना पड़ेगा एक बार। और गोवर्धन में ठीक है, बाद में आपको ना पूरा लेक्चर मैं नोट्स निकालने वाला हूँ बताता हूँ। और एक बात बताया कि एक सब पॉइंट सही है, बड़ा कंटिन्यू लेक्चर नहीं है। अभी दर्शन कैसे होना चाहिए, एक दर्शन तो इंद्रिय से होता है, कि आप जाएंगे अपने आँखों से देखेंगे, लेकिन सही दर्शन शब्द से होता है, सुनने से होता है, कानों के माध्यम से होता है। और पाथवेज ऑफ ईयर्स एंड हार्ट शुड बी यूज टू गो टू वृंदावन। वृंदावन जाने के लिए कर्ण और हृदय इसका मार्ग अपनाना चाहिए, फिर वृंदावन आपको जहाँ पर भी बैठेंगे वहाँ दर्शन होगा, आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ पर भी रहेंगे अगर कानों के और हृदय के मार्ग से जाने जाएंगे तो आप अमेरिका में भी आपको वृंदावन का दर्शन होगा, हृदय से, भाव से। हाँ, इसका और एक प्रश्न पूछा था कि इतना सब इंद्र ने किया ना, कितना भयंकर काम किया, सबको नष्ट करने का प्रयास किया, फिर भी हम देखते हैं कि भगवान इंद्र को कितनी सहायता करते हैं। वो बलि महाराज को भी उन्होंने ऐसा किया, इंद्र के लिए किया ना उन्होंने, कितनी जगह इंद्र के लिए उन्होंने हेल्प किया, इतना सब, फिर भी ये इंद्र ऐसे करता है, फिर भी इंद्र को भगवान सहायता करते रहते हैं, क्यों ऐसा करते हैं? तो कहते हैं कृष्णा रिस्पेक्ट्स द सर्विस डन बाय इंद्र, ऑल्दो ही हैज लॉट ऑफ फॉल्ट्स बट ही इज अ डिवोटी एंड व्हाटएवर सर्विसेज ही डज कृष्णा अप्रिशिएट्स। तो सेवा करना बहुत ज़रूरी है, अपनी गलतियाँ होने पर भी सेवा करते रहना ज़रूरी है, क्योंकि वो सेवा जो करते हैं आप लोग, हम लोग उसका आदर भगवान करते हैं हमेशा। तो गलतियाँ होगी तो भी उसको माफ़ कर देते हैं और दुर्लक्ष कर देते हैं। अभी कंस ने इतना आतंक किया सब लोगों को मार डाला कृष्ण भगवान ने, इंद्र ने इतना बड़ा आतंक किया इतना कंस ने भी नहीं किया था, बताओ। कंस खाली कृष्ण को मारने को आता था, उसने अभी कैसा सोचा नहीं किया पूरा गोकुल को नष्ट कर दूंगा, नंद बाबा सहित सब गायों को नष्ट कर दूंगा, ऐसा कभी प्रयास नहीं किया। लेकिन वो किसने किया? एक डिवोटी ने प्रयास किया, किया कि नहीं? इंद्र का केवल कंस का केवल कृष्ण से ही शत्रुत्व था, लेकिन इंद्र का इंद्र ने जो भी कुछ किया वो पूरा ब्रज को ही नष्ट करने का प्लान किया था उसने, फिर भी भगवान ने उसको माफ़ कर दिया, क्योंकि वो भगवान का सेवक है, इसलिए उसको भगवान ने माफ। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, मतलब कृष्ण का सेवा करना कितना इम्पोर्टेंट है। दोष के साथ भी करेंगे, गलतियों के साथ भी करेंगे, लेकिन करते रहेंगे तो वो दोष भगवान माफ़ करेंगे और सेवा का ही रिस्पेक्ट करेंगे। ये पॉइंट उन्होंने बताया, बहुत सुंदर पॉइंट बताया। और लास्ट पॉइंट बताऊंगा मैं आपके लिए, दो अर्थ हैं इस शब्द के, निज निकट निवास देही गोवर्धन त्वम, मतलब गोवर्धन आप, गोवर्धन त्वम, और एक है गोवर्धनत्वम, मतलब दातृत्वम, गोवर्धनत्वम। तो दूसरा अर्थ क्या है कि आपका जो गुण है ना, गुण वो दे दो आप,
ठीक,
इसको क्या कहते हैं गोवर्धनत्व, यानी गोवर्धन में क्या क्या गुण है उसको कहते हैं गोवर्धनत्व। आपके अंदर दाने का गुण क्या कहते हैं दातृत्व, वैसे त्व जो है ना मतलब क्या, उसके जैसा बन जाना। तो एक अर्थ है उसका कि मैं आपके निकट में आ जाऊँ, और दूसरा अर्थ है कि आपके गुण ही स्वीकार कर लूँ। नहीं समझा आपको? पति के लिए को नींद आ रही है तो कैसे समझेगा? तो एक 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 कह रहे हैं कि महाराज मुझे आप अपने पास बैठने दो, अपने पैरों की सेवा दो, तो कपड़ा धोने दो, और दूसरा ये है कि महाराज आपके जो दिव्य गुण है वो ही दे दो। तो क्या हो गया वो महाराजत्व, महाराज महाराजत्व हो गया ना वो। नहीं समझ में आया? तो वो का मतलब क्या होता है? हाँ, उसके जैसा बनना, उसके जैसा ही बनना, उसको त्व कहते हैं। दातृत्व मतलब क्या? आप दानी हो, आपसे दान मैं ले रहा हूँ, लेकिन बाद में क्या बोल रहा हूँ, आपसे देना रहने देत जावे, घिणा रहने घेत जावे, एक दिवस घिणा रहने देना से हाथ घावे। मतलब क्या समझ में आया कब आपको? वो दे दो, मतलब देना रहने देत जावे, घिणा रहने घेत जावे, एक दिवस घिणा रहने देना से हाथ घावे। मतलब कितने लेते रहेंगे आप लोग, एक दिन देना भी सीखो ना। अभी ले रहे हो ले रहे हो, अभी उसका दातृत्व ही ले लो आप, ताकि आप भी दानी बन जाओ, मतलब उसके जैसे बन जाओ। कितने दिन उसे लेते रहोगे आप, एक दिन उसकी दानी दानी प्रवृत्ति जो है दातृत्व, वो एक दिन आप ग्रहण करो, तब उसका देना भी सफल हो जाएगा। क्योंकि इतना दिन दिया आपने उसको, आपने आपने क्या खाली चीज़ ही लेते रहे उससे, आप उसकी प्रवृत्ति कब लेंगे आप, दान देने की प्रवृत्ति। तो वैसे गोवर्धन के निकट निवास करना एक बात है, और गोवर्धन का गुण अपनाना ये दूसरी बात है। तो उसका दूसरा अर्थ ये है कि देही गोवर्धनत्वम, आपका जो गोवर्धनत्व है वो मुझे दे दो, आप एक आपके पास में रहने दो, और एक आपका गोवर्धनत्व, आपकी जो व्यक्तिमत्व है, आपके जो गुण हैं, आपके जो खूबियां हैं, वो मुझे आप दे दो, ऐसा वर्णन कर। तो ये श्लोक जो था वो सौख्य एक दाता इस विषय पर था कि कैसे सभी ब्रजवासियों को वो सौख्य देते हैं, आनंद देते हैं। और फिर रघुनाथ गोस्वामी कहते हैं कि मैं तो ब्रजवासी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं बहुत पापी हूँ, बाहर का आदमी हूँ, तुम्हारे पास आके यहाँ बसा हूँ, क्योंकि वो उधर राधाकुंड में निवास करते थे ना, लेकिन आप मुझ पर कृपा कर देना, मुझे अपना बना देना और कृपा कर। कोई प्रश्न है इसके ऊपर? बहुत हैवी है भाई। और भी एक बता रहे थे वो कि हम लोग गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं ना, तो हमारा क्या अमृत है, पूरा करना है, पूरा करना है, कैसे भी करके पूरा करना है। अभी पैर दुख रहे, अभी सारा ध्यान पैर पर है, पैर में फोड़े आ रहे हैं, पैर दुख रहा है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, अरे अभी तक आधा बाकी है, अरे अभी पौना बाकी है, अभी थोड़ा सा बाकी है, 2 किलोमीटर बाकी है, पैर तो चलने को भी तैयार नहीं है, पैर तो रुक गए पूरा, तो अपना पूरा कैसा रहता है ना, पूरा करने पर अपना ध्यान रहते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि एक समय पर ऐसा आना चाहिए कि गोवर्धन की परिक्रमा गोवर्धन से बातचीत करते करते होनी चाहिए, क्योंकि गोवर्धन भी एक व्यक्ति है ना, वो कोई पत्थर का ढेर नहीं है, वो एक पर्सनालिटी है ना। वो पर्सनालिटी का खूबी क्या है, वो दो टाइप की पर्सनालिटी है, एक कृष्ण भी है वो, और एक कृष्णदास भी है, हरिदास भी है और हरि भी, दोनों है ना वो। और जैसा आप उसके पास पेश आएंगे ना, वैसा वो आपको दर्शन देंगे। अगर आप हरिदास के रूप में प्रस्तुत होंगे, वैष्णव है ये, तो आपको वैसा संग मिलेगा उसका, और भगवान मान के चलेंगे तो वैसा संग मिलेगा आपको, जैसा आपका भाव वैसा संग मिलेगा। ये भी गोवर्धन का है। तो गोवर्धन के साथ में आदान प्रदान करते करते वो परिक्रमा होनी चाहिए। इसलिए परिक्रमा करेंगे तो आपका पूरी करने पर ध्यान रहेगा, दूसरी करेंगे तो आपको गोवर्धन पर ध्यान रहेगा, तीसरी करेंगे तो गोवर्धन से आप निहारेंगे, उसको देखेंगे क्या है उसके अंदर, उसके गुणों पर चिंतन करेंगे। इस तरह से बोलते हैं हर गोवर्धन परिक्रमा में आपका प्रगति होते रहना चाहिए। हर समय पर पूरी करने के लिए करेंगे तो फिर एक वो रिचुअल हो जाएगा ना, अभी एक मेरा पूरा हो गया, नवंबर का हो गया, अभी दिसंबर का बाकी है, कार्तिक का हो गया, अभी अगले साल का कार्तिक करेंगे वापस, 7 बार कार्तिक का किया, अभी 8वीं बार कर रहा हूँ। ये एक अच्छा है, ख़राब कुछ नहीं है, क्योंकि वहीं पर रुकना नहीं अपने को, उसके आगे भी है ना। कितना साल पैरों को तकलीफ सोच के ही करेंगे, उसके आगे कब बढ़ेंगे। तो हर टाइम अगर आपका भाव बढ़ेगा तो गोवर्धन आपको हर बार नई नई अनुभूति देगा, एवरी टाइम ही विल गिव यू न्यू एंड न्यू रियलाइजेशंस। ये है गोवर्धन का। तो मैं सोच रहा था हम लोग को एक साल में एक बार करते हैं, कभी करते हैं, तो कहते हैं कि वो एक परिक्रमा डांसिंग होती है, वो डांस करते करते ही परिक्रमा करते हैं, शर्म होता ही नहीं कुछ, आनंद ही आनंद है, जॉय फुल्ली। और स्थान इतने आगे है कि आप वो अगर ध्यान नहीं रहेगा तो आपके लिए पूरा करने में रहेंगे, तो इतने सारे लीला स्थली है उसके अंदर, उसका क्या, इतनी सारी लीला स्थली है, एक एक का भाव, अलग अलग भाव है उसके अंदर, बहुत सुंदर सुंदर। क्योंकि भगवान ने वादा किया था राधा रानी को, राधा रानी ने कहा था कि मुझे आपको मिलने के लिए एक अंतरंग स्थान चाहिए, तो गोवर्धन को वो गोवर्धन का निर्माण उस समय हुआ था जब भगवान के सामने राधा रानी ने इच्छा प्रकट की थी कि मुझे आपके साथ में अंतरंग लीला करनी है, तो उसी समय हृदय से गोवर्धन प्रकट हो गया था, ऐसा छाती से प्रकट हो गया था। और गोवर्धन को भी उन्होंने यही बात का वरदान दिया था कि देखो अभी तो ब्रिज तो पूरा हो गया है, राम भगवान ने मैसेज दिया था, ब्रिज तो पूरा हो गया है, अब आप इतना रो रहे हो तो दर्शन करने तो अभी भी आ सकते हो, लेकिन आपको आपको कुछ समय के लिए दर्शन मिलेगा और चरण स्पर्श कुछ समय के लिए मिलेगा, क्योंकि मुझे तो युद्ध करना है जाके आगे, तो आप आओगे समझो लास्ट में, क्योंकि लास्ट में गैप था ना 7 कोस का, तो 7 कोस का गैप में ही उनको रखने का प्लान था, एक ही रख के पूरा कर देने का ब्रिज। लेकिन वो लाते लाते वो 7 कोस का गैप भी भर गया, तो गोवर्धन बहुत रोए। तो भगवान ने फिर मैसेज भेजा कि अगर आपको अभी इतना दुख हो रहा है विरह का, तभी भी आ सकते हो आप, लेकिन मैं जल्दी में हूँ, आपके ऊपर चरण रखूँगा और निकल जाऊँगा लंका के लिए, और लंका के मैं युद्ध युद्ध करूँगा, जब सीता को ले लूँगा वापस, तो फिर मैं हवाई जहाज से जाऊँगा, चल के नहीं जाऊँगा। तो ये तो थोड़ी देर के लिए, अगर आपको आना है तो आ सकते हो, और रुकना है तो आपको मैं पूरा 10-11 साल 52 दिन तक पूरा आपके ऊपर लीला करूँगा, अंतरंग लीला करूँगा आपके, और रोज़ आऊँगा आपके पास, रोज़ आपके ऊपर नाचूँगा, लीला करूँगा, गौचारण करूँगा, और रात की लीला करूँगा, दिन की लीला करूँगा, हर दिन आपको दर्शन मिलेगा, हर दिन चरण स्पर्श मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो बोला मैं रुकने के लिए तैयार हूँ, इतना समय के लिए, कम समय के लिए मिलना है, उससे अच्छा मैं रुकने के लिए तैयार हूँ, ताकि लंबा संग मिलेगा आपका। तो वो बोले कि ठीक है, लेकिन वो बोले कि इतना समय रुकना भी मेरे लिए बहुत तकलीफ वाला था, मैं इतना विरह सहन नहीं पाऊँगा। तो हनुमान जी आप मुझे वादा करो कि आप भी मेरे साथ में यहाँ रहोगे और मेरे विरह में मुझे सहारा दोगे मुझे। तो फिर हनुमान जी पीछे रह गए पुंचरी का लोटा बाबा के रूप में, और दूसरा रूप में युद्ध में चले गए, और वो रूप में उधर ही रह गए, और गोवर्धन को उन्होंने तब से लेकर कृष्ण का जन्म आने होने तक सहारा दिया, खुद तपस्या करते रहे और गोवर्धन को सांत्वना करने के लिए भी वहाँ पर बैठे, सहारा दिया दुख में, और उसके बाद में द्वापर में भगवान का जन्म हुआ। तुलसी का लोटा वो हनुमान है स्वयं,
बहुत आनंद आता है ना, वो पहुंचती है वो जगह, मुझे बहुत
जबरदस्त जगह है।